ध्यानञ्जन शलाकय चक्षुरुन्वितं येन तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिं हरिव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णान्तदेवी प्रणमामि हरि हा देवी काकु हर गदगदयाद्वाच जाचे निपत्तभोगतार्पि अस्य प्रसादमबुद्धस्य जनस्य चोद्य गन्धर्विके तव गणीवरणाम्बिके अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दुवरम् जाग्रं जागृति गरोच श्याम विगत कंगपृष्ठम्बरस् वृंदारण्य निवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कंद निवेशित जलगुलं ध्यायेम् यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वल्पायनकातरया पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिमेदु तं सर्वभूतलं त्वैवास्मि त्वैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय माम चरे मनुलतास्तर्व आत्मनि विष्णुं वैजयन्त जीव पुष्पफलाढ्य प्रणतभारपिटपा मधुधारा प्रेमहृष्टतनुवपृष्णोष्मा। इस श्लोक की सनातन गोस्वामी की व्याख्या मैं कर रहा था। गोपियां भाव में अभिष्ट होकर के तरुलताओं का वर्णन कर रही हैं, अर्थात अपने भावों को व्यक्त कर रही हैं उनके बहाने। अपने प्रियतम कृष्ण को प्राण कोटि प्रियतम के रूप में अपने हृदय में गोपन कर रही हैं, छिपा रही हैं, किंतु प्रेम से विवश होकर के व्यक्त हो जाती है बातें उनकी, प्रेम की बातें, और उसी को वो लताओं और वृक्षों के माध्यम से प्रकट कर रही हैं। वनलता सर्व आत्मनि विष्णु व्यंजन, करें हैं कि वृंदावन के तरुलता का देखो प्रेम तो कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम। वो कृष्ण को अपने अंदर में छिपाना चाहती हैं, तरु छिपाना चाहते हैं और लताएं छिपाना चाहती हैं। इनका यह प्रेम भाव अपने आप प्रकट हो जाता है, उसी को कह रही हैं लताओं में जो फूल लगे हुए हैं और वृक्षों में जो फल लगे हुए हैं, करें जैसे ये प्रेम को छिपाना चाहती थी लताएं और पेड़, किंतु दोनों में वो उसके फल फूल निकल आए, फूल भी निकल आ गए और फल, ये क्या चीज है इसको बतलाने के लिए पहले कहते हैं कि लताओं का प्रेम पेड़ों से बढ़कर है, वृक्षों से बढ़कर है। पेड़ पति हैं, लताएं पत्नी हैं, किंतु पत्नियों का प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत अधिक है, स्वाभाविक अधिक। तो वो इस भाव को मानो प्रकट कर रही हैं, ये कृष्ण के जो भक्त हैं मानो पुष्प के स्वरूप, भक्त फूल के स्वरूप। भक्त सब पुष्प तुल्य रूप, लताओं का रूप भक्तों के रूप के अनुसार, जैसे भक्तों का अत्यंत सुंदर रूप ब्रजवासियों का, और जाति माने गोप जाति, और साधारण भक्तों का जो रूप जाति और ऐश्वर्य आदि धन के द्वारा ये सब क्या है, पुष्प सदृश है। भक्तों का सौंदर्य, उनके भाव, उनकी जाति और ऐश्वर्य उनका धन है, और फल क्या है, पुत्र आदि। जैसे भक्त रूप जाति ऐश्वर्य धन और फल पुत्र इत्यादि के द्वारा परिवेष्टित होकर के कृष्ण की सेवा करते हैं भक्त लोग, जैसे अर्जुन, उनका रूप द्रौपदी, अभिमन्यु, पांचों पांडव, कुंती माँ, ये सब लेकर के और अपने धन ऐश्वर्य के द्वारा कृष्ण की सेवा करते हैं। ऐसे भक्त लोग अपने रूप से, अपने गुण से, अपने भावों से, अपने पुत्रों से, धन से, सब प्रकार से उनकी सेवा करते हैं, मानो ये लताएं और वृक्ष भी उसी प्रकार से इनकी सेवा करते हैं। लताओं का रूप कैसा, बेली चमेली की लताएं और उसमें फूल खिले हुए हैं, यह इनका सौंदर्य है, यही इनका धन है, यही इनका रोमांच है और यही इनका गंध है, ये सब कृष्ण के वो सेवा में लगा करके प्रमत्त हो उठती है, रोमांचित। और कभी कभी पेड़ों का उनका जो फल है मधुधारा, इसके द्वारा कृष्ण की वो सेवा करते हैं। अथवा वेद की शाखा लो, ये शाखाएं क्या है, पेड़ों की और लताओं की जो शाखाएं हैं ये वेद की शाखा की तरह आती है। वेद की बहुत सी शाखाएं होती हैं, जिसमें 1008 शाखाएं प्रधान होती हैं, उसमें शाखाओं में गोपाल तापनी इत्यादि भी प्रधान है। तो उसमें उनके जो सुंदर सुंदर वाक्य वेदों के होते हैं, मधुपुष्पित वाक्य, कृष्ण का नाम करने से सारे प्रकार के शुभ उदित हो जाते हैं, अशुभ दूर हो जाते हैं। कृष्ण की भक्ति करने से जीवन सार्थक हो जाता है, उनको जन्म लेना नहीं पड़ता, चिरकाल के लिए आनंद में वो लोग डूब जाते हैं। ये है कैसे, ये फूल हैं, ये जितने वाक्य उनके हैं मानो ये फूल हैं। और ऐहिक और उनके द्वारा जो क्रियाएं हैं, आचरण है, भक्ति की क्रिया या कर्म कांड की का जो आचरण है, ये सब फूल हैं। और फल क्या है? ऐहिक और पारत्रिक। ऐहिक माने लौकिक और पारलौकिक। जितने भोग सुख हैं जो उनको मिलते हैं, ये मानो फल हैं। इनके द्वारा, फल और फूलों के द्वारा अत्यंत विनम्र होना, लज्जा इत्यादि होना, ये गुण उसमें होते हैं। इस तरह से उनकी शाखाएं इनसे भरी पड़ी हैं, फल और फूलों से। ऐहिक और पारलौकिक, फल और फूल से। फूल क्या है? अभी बतलाया, भक्त रूप ने शास्त्रों के वाक्य बदन बचन। जैसे कोई भी एक जो कृष्ण भक्ति से ही सवई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रधोक्ष जय अहेतु क्या प्रतिहता जयात्मा समझ। भागवत की कथा सुनने से तत्क्षणात् हृदय अवरुद्धते,
तत्क्षणात्
महामुनि कृते ये सभी पुष्प हैं, ये सब पुष्प हैं। वैसे वेदों के कर्म कांड के भी पुष्प हैं। जो चातुर्मास का पालन करता है उसकी सब प्रकार की सिद्धियां हो जाती हैं। ऐसे कर्म कांड में भी है, ऐसे भक्ति शास्त्र में भी है। ये वेदों के ये सब वचन पुष्प हैं और उनके द्वारा आचरित होने पर जो फल हैं जो मिलते हैं, ऐहिक और पारलौकिक, ये फल हैं। फल हैं ये क्या चीजें, ये क्यों हैं? किसी को रोमांच हो जाए, किसमें आंखों में आंसू आ जाएं, प्रेम भरे आंसू आ जाएं, कि उसको हर्ष रोमांच इत्यादि हो जाते, ये किससे होता है? भीतर में कुछ हो रहा है, कोई चीज क्रियावती हो रही है। वो क्या है? भीतर में विष्णु, विष्णु माने कृष्ण को आलिंगन जनित, मिलन जनित, उनकी सेवा जनित जो सुख और अष्ट सात्विक योगिका है, ये हो, अन्यथा नहीं होता। किंतु उनको ये छिपाना चाहते हैं, ढकना चाहते हैं उस भाव को, किंतु वो ढकता नहीं, तो उसका हो जाता है तो फल और फूल दोनों उसमें और आ जाते हैं। फूल भी आ जाता है, फल भी आ जाता है, वो ढक नहीं पाते। इसलिए दूसरे लोग जो रसिक हैं, भावुक हैं, इन चीजों को समझ लेते हैं कि ये क्यों हो रहा है, फल फूल क्यों लग रहे हैं, ये कह रही है गोपियां लताओं और वृक्षों को देख करके, किंतु है कहां? ये गोपियों में ही है। मात्री जार ने कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है, उस प्रेम को मात्री जारवत छिपाना चाहिए, किसी को पता नहीं लगने देना चाहती जो कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम है, हम उनसे मिली हैं, यह नहीं बतलाना चाहिए। किंतु प्रकट हो जाता है, कैसे? वो छिप नहीं सकता, कृष्ण के हृदय में लेने से ही उनको रोमांच, कंप, आंसू इत्यादि फल फूलों से वो भर जाती हैं। उसी को वो करें, इनके अंदर में तो कृष्ण मिलन हो रहा है लताओं में और पुष्पों फलों में पेड़ों में, किंतु ये छिपाना चाहते हैं, किंतु वो छिपता नहीं, फल और फूलों से ये भर जाते हैं और अपनी शाखाओं को नीचे नम्र करके, ये विनम्रता गुण आया, विनम्रता गुण से वो झुक करके कृष्ण के चरणों में उपहार के रूप में अपने को, हृदय को वो दे देती है। मूल का ईव है, व्यंजयंत ईव, ईव माने भांति। किसके भांति ये नहीं लिखा, अपने भांति कह रही हैं, या प्रेमी भक्तों की भांति ये इनको व्यक्त कर रही हैं, उनको दिखला रही हैं, किंतु है यू अपने लिए, गोपियों के लिए। ये शब्द का प्रयोग सूचित हो रहा है कि परम गोप्य हेतु, कृष्ण परम गोप्य हैं, विष्णु को स्वयं वे प्रकाश नहीं करने पर भी कौन, ये गोपियां, गोप धातु से ये गोपी बनी, अपने कृष्ण को, अपने प्रियतम कृष्ण को, उनके प्रति प्रेम को वो छिपाना चाहती हैं, इसलिए उनका नाम है गोपी। नहीं करने पर भी प्रेम के परवश होकर के वो स्वयं ही, जैसे कोई कृष्ण का भजन कर रहा है या कर रही है, कृष्ण का चिंतन करते 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 कृष्ण का कोई भाव उदित हुआ, मूर्छित अवस्था में भी या रोग में भी मूर्छित हो गई हैं, किंतु वो भाव प्रकट होता है। आज हमने कृष्ण को देखा, आज हमने कृष्ण से देखा, उसे भेंट हुई इत्यादि। अभी सुना जे कोई लड़की यहाँ से दिल्ली गई, दिल्ली की, और उसने वो बीमार, उसको 104.5 डिग्री बुखार, करे जी चार्ज में वहाँ गई
मंदिर में,
सेवा कुंज में कहाँ गई, और वहाँ पर कृष्ण मिले, बस कृष्ण मिले, कृष्ण मिले, ये रट लगा रहे पागल। हमको अभी टेलीफोन से कहा तो मैंने कहा जैसे ठीक है कह देना, जैसे हाँ मिले हैं, महाराज जी ने कहा मिल गए हैं, वो कृष्ण ने हमको बतलाया कि हम उससे मिले थे, इसलिए चिंता करने जल्दी से इसको कहा आश्वासन दे, वो जल्दी से ठीक हो जाए। उसी तरह से जब इन तरु और लताओं की ये दशा है, तो उन गोपियों की मुरली की ध्वनि और कृष्ण के रूप को दर्शन करके क्या अवस्था होती होगी। किंतु पहले की भांति ब्रज देवियां अपने दुर्भाग्य को कोसती हैं, धिक्कार है हमें, किंतु इसके द्वारा ये मत समझो कि इसमें दुख उनको हो रहा है। दिवा भाग में वो कृष्ण से नहीं मिलती, नहीं मिलती, और दो चार पांच दस बीस मिल करके अपने समझाती और कृष्ण के इन विषयों की चर्चा करती हैं, रूप और वंशी ध्वनि की चर्चा कर रहे हैं और अपने को हतभागा इत्यादि कहती हैं। किंतु इसे मत सोचो जिसमें उनको दुख की प्रतीति होती है, वो बिरह ही आनंदमय है। इसलिए अपने अभाग्य स्वरूप को वो दुख नहीं कर रही, बाकी जो कृष्ण से मिली नहीं इत्यादि जो दुख प्रकाश कर रही हैं, पेड़ और लता तो अपनी भुजाओं को लेकर के पुष्प का हार और कृष्ण के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, उनके स्पर्श का आनंद ले रहे हैं, हमको नहीं हो रहा, ये अनुभव उस समय कर करके दुखी हो रहे हैं, किंतु ये मत समझो कि ये सचमुच में ये दुख है, नहीं करेंगे तो एक सेकंड भी नहीं बचेंगी। उसके चिंतन में जो आनंद है, ये आनंद को नहीं बतला रहे हैं, किंतु वो दुखी कर रही हैं, तभी ये दुख भी सबे जानो परानंद सुख, उसको बड़ा दुख, परमानंद में है ये, नहीं तो चिंतन क्यों करती। इसलिए कि इस अध्याय के अंत में वो बोलेंगे एवं ब्रजस्त्रियो राजन कृष्ण लीला अनुगायति रेमे रेहसु तस्तन मनस्का महोदय। ब्रज देवियों का चित्त मन कृष्ण में अर्पित था, इसलिए वे इस गीत में ये जो गान कर रही हैं, परम अपने को दुखी, हिरणियों को परम सुखी, मेघों को परम सुखी, परम सौभाग्यवान मना रही हैं, मोरों को, कोयलों को, गायों को और अपने को धिक्कार दे रही हैं। इसमें ये मत सोचो जैसे वो बड़ी दुखी हैं, खबरदार, या गोपियों का भी परमानंद का गीत है, किंतु उसमें उनको कैसी दुख की अनुभूति होती है, दुख की अनुभूति भी होती है, किंतु उनका वह सारा दुख और विरह सभी कुछ आनंदमय है, जड़ीय दुख सुख नहीं है। दिन में कृष्ण से वो मिलती नहीं, किंतु विरह में उनका मिलन होता है। सारे दिन उनकी प्रतीक्षा करती हैं, उन्हीं का गुणगान करते हुए उन्हीं से मिलती हैं। दिन में नहीं मिलती मतलब क्या, तब मिलती हैं कभी, इसलिए उनका रात्रि काल बहुत परमानंदमय सुखमय होता है। और इस विरह में भी उनका परमानंद, ये सब उद्गार के द्वारा, कृष्ण की लीला कथाओं के द्वारा वो आनंदित रहती है। इसलिए वो इस रूप में समझो ये कृष्ण का लीला गान करके वो सुखी हो रही, नहीं तो वो जीवित नहीं रह सकती। तात्पर्य यह कि सनातन गोस्वामी कह रहे हैं विरह दुख के सागर में भी वे ब्रजांगनाएं कृष्ण लीला का गान करती करते 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 कृष्ण में तन्मय हो जाती हैं और उनसे मिलन का सुख अपने आप उनको मिलता है। क्योंकि उनके मन का संकल्प और चित्त की जो गति है कहाँ है, कृष्ण में। चित्त की गति सब समय स्वाभाविक रूप में कृष्ण की तरफ में प्रभावित रहती है, वो कृष्ण। इसलिए महादेवियां कृष्ण के लीला का गान कर दिन में भी परम सुखी रहती हैं। यदि ये लीला का गान नहीं करती न जाने क्या उनकी स्थिति हो। इसलिए वैष्णव लोग भी जो उच्च कोटि के वैष्णव हैं हरिनाम करते समय में, लीला चिंतन करते समय में, भगवान का स्मरण करते समय, भगवान की सेवा करते समय, उन्हीं गोपियों के इन गानों का या और गोपियों के और जो चरित्र है गान करके वो उसी मिलन सुख का आनंद उपभोग करते हैं और ऊपर से बहुत विरही दिखलाई। ये उत्तम भागवतों के, किंतु ये रागानुगा में ही होगा संभव, वैदिक भक्ति में ये सब चीजें संभव। इसलिए इस अध्याय के प्रारंभ में भी बतलाया गया है 10:35:1 वह जुगल गीत के प्रारंभ में गोप्य कृष्णे बन जाते, उसके बाद क्या हो रहा है, तमनु द्रुतचेतसा कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निन्नु दुखेन वासरान। गोपियों के का निशा भाग मैंने रात कृष्ण के सहित विलास में परम सुख के साथ में अतिवाहित होता था, किंतु दिव्या भाग में जब कृष्ण वन में गमन करते गोचारण करते करते सखाओं के साथ में, तो उनका चित्त भी उस शरीर को छोड़ करके उनको और वन में कृष्ण के साथ साथ में उनका चित्त चला जाता। इसलिए वे कृष्ण के नानाविध लीलाओं का गान कर अत्यंत कष्ट से दिन व्यतीत करती। ये तो गीता इस श्लोक का ऊपरी अर्थ, किंतु भीतरी अर्थ ये निन्नु दुखेन बासरा, ऊपर से तो लगता है कि ये दुख के लिए कह रही हैं, किंतु दुख के लिए नहीं कर रही हैं। कैसे, इसको सनातन गोस्वामी व्याख्या के द्वारा बतला रहे हैं। यहां दुख पद का विरह पीड़ा मय दुख दीन और सुख से अतिवाहित, दिन भी सुख के साथ में अतिवाहित किया था। विरह का जो दिन है, जो कृष्ण से मिलने नहीं, कृष्ण गोचारण करने के लिए वन में चले गए, गोपियां अपने घर में बैठी हुई है, यह तो दुख की बात है विरह का दिन। किंतु यह विरह का दिन भी सुख से अतिवाहित करती थी। कैसे, दस पांच अपने स्व जातीय मिल बैठ करके कृष्ण की उन लीलाओं का की भावना करके देख करके मानो आंख से देख रही हैं, कृष्ण से उनका मिलन हो रहा है और बड़े सुख से। पता ही नहीं लगता था कि ये दिन कब चला गया। शाम हो गई, कृष्ण की बंसी बजी, गायों का हम्बारव हुआ, धूल आकाश में उड़ी और फिर वो गई, देखी जे कृष्ण बंसी आ रहे, इसलिए उनको प्रतीति नहीं हुई लीलाओं के गान से। इस तरह से भक्तों के चरित्र को देखो, रूप सनातन इत्यादि गोस्वामी का देखो। कालावसानी कृतौ निद्राहार विहार काद विजितौ चातंत दीनौ तुजौ राधा कृष्ण गुण स्मृते मधुरमान देर सम्मोहितौ वंदे रूप सनातन। थोड़ा सा भी तो अनुगमन करने की चेष्टा करो, थोड़ा सा भी अनुगमन हो जाए, कैसे रूप गोस्वामी जी भजन करते इसमें है ना, संख्या पूर्वक संख्या पूर्वक नाम गान नत भी काल अवसान। सब अवसान काल कैसे व्यतीत करते थे, संख्या पूर्वक नाम गान। गान क्या, यही सब गान रूप सनातन मिलते और 10-12 घंटा दिन का वैसे ही कट जाता, गोपियों के कथाओं को गान करने में लग जाता, प्रणाम करने में, चिंतन करने में, हरिनाम संख्या पूर्वक करने में। उनका एक समय भी, एक मिनट समय भी हम लोगों जैसा नहीं बीती। अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये लोक संग्रह है। लोक संग्रह समझते हैं, लोक संग्रह, किंतु सारा जीवन लोक संग्रह नहीं है करना चाहिए। लोक संग्रह में ही जीवन को बिता दिया, भजन करना चाहिए। भजन करते करते लोक संग्रह केवल लोगों को भगवान की भक्ति तरफ में लाने के लिए, अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं, तब तो वो ठीक है। ये हम लोगों का समाज, हम इस तरह से सृष्टि करते हैं कि इन कथाओं को सुनने वाले भी कुछ हों और जिसको परस्पर सुन और गा सके, इसलिए ऐसे समाज की रचना के लिए हम लोग ये एक समाज प्रस्तुत करते हैं। नहीं तो नास्तिक लोग इन कथाओं को सुनेंगे, उनसे तो कहो जो बीड़ी सिगरेट मत पियो, हिंसा मत करो, द्वेष मत करो, समय बर्बाद मत करो, लौकिक व्यवहार में मत रमो, स्त्री पुत्र धन परिवार के साथ में आसक्त मत रहो, यही कहेंगे बस। किंतु रूप सनातन जैसे लोगों को, उनके अनुगत जनों को इसके लिए भी समय नहीं है, दिन रात ऐसी कथाओं में वो डूबे रहेंगे, जो आएगा उसको भी उसमें डुबा देंगे। इसलिए यहां पर दुख जैसा प्रतीत होता है। कुंती, कुंती के पति मर गए, पांचों बेटे उनके हैं, धृतराष्ट्र के यहां रहती हैं, कभी किसी को विष देता है दुर्योधन, कभी कुछ, कभी ला के गृह में उनको जला देता है, कभी जुए में उनकी स्थिति तक को हर लेता है। उसमें कुंती जी कैसी सुखी होंगी, जिसमें कुंती और सुभद्रा और द्रौपदी और पांचों पांडव का रहते, अभिमन्यु को मारा जाता है चक्रव्यूह में, उनको कैसा बीत रहा होगा। तो कुंती जी कृष्ण से कहती हैं, अरे वसुदेव जी से कहते हैं, भैया हमें को भूल गए, जब द्रौपदी को नग्न करके सभा में नंगा किया जा रहा था, अपमान किया जा रहा था, पांडवों को राज्य से निकाला जा रहा था, इनको बर्णावत नगर में जलाया जा रहा था, उस समय तुम देखते नहीं थे क्या, तुम तो अंतर्जामी हो, तुम्हारा बेटा अंतर्जामी, तुमने हमें याद नहीं की। उधर में वसुदेव जी क्या कहते हैं, यही तो काल की गति है, तुम जानती नहीं कि उस समय हमारे छाती पर दाल डाला जा रहा था, हमारे 6 पुत्रों को कंस ने वध कर दिया हमारे आंखों के सामने, हमारा सातवां बेटा है, गर्भ से ही उसे हरण कर लिया गया, और आठवां पुत्र को होते हैं कितने, कितना दुख हमें आया, अभी तक जेल में हम लोग पड़े थे, ये दुख सुख पर हम लोगों का हाथ नहीं। अच्छा कुंती का यह कहना दुख है क्या, क्या सुख का है, सब समय कृष्ण उनके साथ में रहते हैं, इसे कहते हैं कि हमारे ऊपर लाख विपत्तियां आए, सुख ना आए, जैसे कि तुम सब समय हमारे पास में रहो। आज यदि कृष्ण द्वारका जाते हैं तो ये लोग विपत्ति की सृष्टि करते हैं, कुंती जी द्रौपदी सुभद्रा पांचों पांडव मिल करके कोई ऐसा उपाय करते हैं, दुख को जानबूझ करके बुलाते हैं, सृष्टि कर लेते हैं, जानबूझ करके जुआ खेल लेते हैं, ऐसा जैसे कृष्ण आ जाए, इसलिए उनका वह दुख दुख है या सुख, जब कृष्ण उनके ऊपर में छत्र छाया की भांति रहते हैं, इसलिए उनका दुख दुख नहीं। जब इन्हीं का नहीं है तो गोपियों की बात क्या, इसलिए कृष्ण के वन में जाने पर कृष्ण की लीला में वो चिंतन गायन में चिंतन में ऐसे तदात्म हो जाती हैं कि वो दुख भी क्षण मात्र में चला जाता है। इसलिए ऊपर से दिखने वाले कृष्ण के विरह में गोपियों के दिवा भाग भी रात्रि की भांति ही मिलन पूर्ण और सुखमय बोध होता है, उसी में वो सब भूल जाते हैं, इसे दुख में जीवन भी बड़े सुख से अतिवाहित किया था, ऐसा समझना होगा। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और वो रो रही हैं, है? हाथों को ऊपर उठा करके आंख बंद करके, अब तो लज्जा गई, और समय कृष्ण जब उनके शरीर में प्रवेश किए होंगे वस्त्र के रूप में, उनको उसका स्पर्श का आनंद मिला होगा कि नहीं, ये व्यक्ति उसमें नहीं है, किंतु ये अनुभव है। इसी तरह से वैष्णव का दुख भी इसी प्रकार, दुख में भी भगवत मिलन जनित आनंद की प्राप्ति होती है। गोपियों का प्रेम परिपाक है, परिपाक माने क्या, पका हुआ है, परिपक्व, साधन नहीं है, परिपक्व कहते हैं पके हुए को, साधन का फल वो परिपक्व है, तो उनका प्रेम परिपाक स्वभाव अर्थात सब समय उनका प्रेम उनका उनकी आत्मा में है, इसलिए उनको कहते हैं क्या, रागात्मिका, अनुराग उनके हृदय में है, वह अनुराग अनुराग भाव महाभाव से ऊपर अवस्था तक चला गया है, जिसकी हम लोग इस अवस्था में कल्पना नहीं कर सकते, अभी तो आसक्ति की परिकल्पना नहीं कर सकते, आसक्ति की नहीं कर सकते, आसक्ति में क्या स्थिति होती है, निष्ठा में ही क्या होती है, अभी थोड़ा सा दुख आ जाए बाहरी तो हम भक्ति को भी भूल जाएंगे, तिल मिला जाएंगे, भक्ति और भगवान दोनों को छोड़ देंगे संसारिक सुखों के लिए और छोड़ ही रहे साधारण बातों के लिए। इसलिए प्रेम की परिपाक दशा के कारण उनका स्वभाव ही प्रेम है, इसलिए बाहरी दृष्टि से उस दृष्टि से प्रेम परिपाक की दृष्टि में वो समझ रही हैं कि अत्यंत कष्ट से जीवन यापन करती हैं, किंतु कृष्ण के साथ में विरह में भी जो मिलन होता है उनकी ललाओं कथाओं का जो गायन करती हैं, इसलिए उसको आनंद समझो, दुख मत समझो संसारी। उनका यह दुख दुख भी क्या है, प्रेम का विकार है, सच्चिदानंद में जो प्रेम है वो प्रेम का विकार है। कहते हैं कि वेणुनाथ ऐसी है, वेणुनाथ के समय से जब लताओं की ऐसी स्थिति हो जाती है, नए नए पत्र पुष्प और फलों में फल, पेड़ों में फल फल इत्यादि लग जाते हैं, मधु धारा उनसे गिरती है, तब ब्रज गोपियों का जो प्रेम है, गोपियों का, उनको विरह कैसे होगा, कैसे सज्ज हो सकते जब इन्हीं को ऐसी दशा है। इसलिए समझो उस विरह में परमानंद है, इसलिए उनका विरह भी परमानंद है। सर्वत्र शेष में श्रीधर स्वामी जी इस श्लोक का वर्णन करते हैं। गोप्य वनम जाते तमानुद्रुत चेतस, इस श्लोक की व्याख्या में श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि वीरदशा भी सुख की अनुभूति में ही उनका सदा पर्यवसित था। गोपियों का जो कृष्ण के विरह में रहना, उनका गायन करना, रोना, यह सब कुछ सुख में ही पर्यवसित होता। इस प्रकार से जैसे गोपियां रो रही हैं, उनकी दशो दशा दशाएं हो रही हैं, उद्धव जी देख रहे हैं, कहते हैं हे गोपियां तुम धन्य, नंद बाबा आपके समान और सौभाग्यवान और यशोदा जैसी कोई सौभाग्यवती नहीं, कृष्ण को बेटा मान करके उनके दुनिया में इस प्रकार की इनकी अवस्था, ये तो दूसरे किसी के लिए संभव बात है। सुख समझ रहे हैं किंतु फिर उसी दुख के डर से भाग गए, मथुरा लौट गए। गोपियां नहीं गई। इस प्रकार से प्रजंगनाओं का चित्त कृष्ण में अर्पित था। कृष्ण में यदि अर्पित था तो विरह कहां, जब कृष्ण के साथी में वन में जाती हैं, उनका चित्त जला जाता है और सब समय उनके मिलन जनित आनंद हो रहा है, तो विरह की संभावना है। इसलिए तत्वदर्शी लोग तो इस प्रकार से समझेंगे जैसा श्रीधर स्वामी जी कह रहे हैं। इस श्लोक की व्याख्या में उन्होंने कहा है कृष्ण जैसे परमानंद घन मूर्ति हैं, उनकी लीला भी परमानंद घन स्वरूपा है। दोनों में, लीला में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, कृष्ण नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। इस तरह से उनकी कथाओं में और कृष्ण में, कृष्ण की लीलाओं में और उनमें, कृष्ण के गुणों में और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं, एक ही वस्तु है। किंतु ताई बोलिया कि क्या ऐसा होने से ही क्या ब्रजलाना है, उनके इस लीला को गायन करके विरह में सुखी होती थी, कभी नहीं। सनातन जी करें क्यों, सर्वदा उनका प्रेम सब समय वर्धनशील है, नाना प्रकार के भाव आते हैं, कभी विरह, कभी मिलन, कभी कुछ, कभी कुछ, नए नए प्रेम उसमें आविर्भूत होते हैं, प्रेम की लहरियां एक दूसरे पर आती हैं, कभी एक दूसरे को ढक लेती हैं, कभी एक दूसरे को और वर्धित कर देती हैं, कभी संवर्धन करती हैं, कभी संवर्धन करती हैं उस प्रेम को नए नए रूप से,
भाव संधि, भाव
उसी में भाव संधि, भाव सबल, भाव भाव इत्यादि। उस श्लोक में महर शब्द से भद्रा और मंगला नामनी गोपियों, गोपियां की भांति भद्रा और मंगला की भांति विपरीत प्रेम लक्षण, विपरीत लक्षण से प्रेम और उस प्रेम के उदय से जो गोपी में, जे गोपी थे, अर्थात भद्रा जो है ये विरुद्ध पक्ष के से संबंधित,
चंद्रावली
की तरफ, उनका उनका क्या है, क्या पक्ष विपक्ष और सुध, उनकी सुध पक्ष की है, इसलिए उनके सुख दुख में सुखी रहती हैं। कृष्ण के पास गोपियों का, इन राधा इत्यादि का मिलन होने से जैसे चंद्रा को दुख होता है, उससे भी अधिक दुख होता है इनको, उनकी सुध, इसलिए जाकर के उनसे, चंद्र ये दोनों, इनका विपरीत प्रेम है, किंतु विपरीत होने से भी क्या इसमें दुख है न सुख है? उनमें भी जो प्रेम का उदय, वो भी प्रेम का ही विकार है। नाना तरह से प्रेम उदित होता है, नाना प्रकार की भावना से प्रेम रसिका अर्थात प्रेमाग्नि दग्धा गोपियों का सुख लेश भी वहां देर असंभावना करा जाए कि रूप। इसलिए उस समय गोपियों का जो दुख है उसको सुख कहाँ उसमें है इसकी समाना नहीं की जा सकती। ये कर रहे स्वपक्ष की तरफ मंगलार उनको लिया विपक्ष का और ये लेते हैं स्वपक्ष। इसलिए राधा के विरह में ये कैसे कह सकते हैं कि राधा जी को उस विरह में भी कृष्ण का गान करने से लीला और वो सुखी रहती हैं, आनंदित होती हैं, ये मत समझो। ये उनका अपना विचार चिन्मय भूमिका में, उस वृंदावन की भूमिका में पहले तटस्थर के रूप में बतलाए, अब अंतरंग रूप में इसको बतला रहे हैं। हाँ, गोपियों को दुख होता है, नहीं दुख आता रोएंगे कैसे? इस रूप में तरह तरह के ये अर्थ सब प्रेम कामहा आविर्भाव और उसका उत्तरोत्तर वर्धन में वैशिष्ट है। प्रेम स्नेह मान प्रणय प्रेम ही है किंतु एक नहीं है, इनमें वैशिष्ट वर्तमान होता है। इसलिए प्रेम में मिलन और विरह दोनों एक तात्पर्य पर होने पर भी एक नहीं है, उनमें भी वैशिष्ट जरूर आना चाहिए। विरह में भी सुख दुख होता है, मिलन में सुख होता है, विरह में भी सुख ही होता है, तो फिर वैशिष्ट क्या रहा? इसलिए वहां का दुख यद्यपि आनंदमय आनंद का ही विकार है, बात ठीक है, तभी तो वहां पर इसकी अनुभूति होती है। तभी तो कृष्ण का लीला गान करते हुए उनके दुख इसी प्रकार से कट जाते। कोई है? आ जाइए।
तंगीन तस्मै श्री गुरवे बंध्या कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकिशे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो। अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरम् जड्डञ्जागुडरुचि साङ्गविदधतङ्ग पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्य निवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेन् तामो भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणा। यं प्रव्रजन्तमन्त्रेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विद्याय राधे तं मे मां चरणं।
आप लोग सभी कृष्ण तत्व पर कल से दो तीन दिन आप लोग बोलेंगे, सभी लोग प्रस्तुत हो जाएंगे। कल से जिन लोगों ने शुभानंद जी और एक आदमी कोई बोला था सर, ये भी बहुत संक्षेप में बोले थे। कल से हम लोग 2-3 दिन कृष्ण तत्व के संबंध में सब लोगों एक एक करके मैं पूछूंगा और खड़ा कराऊंगा। देश में प्रस्तुत होकर के आप लोग कृष्ण तत्व के संबंध में बोल रहे कृष्ण तत्व में सभी तत्व आ जाते हैं, कुछ बाकी नहीं रहता। कृष्ण कृष्ण की शक्ति, कृष्ण शक्ति के जितने भी परिणाम स्वरूप हैं जीव जगत सब, उन कृष्ण की छाया शक्ति अर्थात ये जड़ शक्ति और भक्त तत्व भक्ति तत्व प्रेम तत्व जीव तत्व सब इसके अंतर्गत आ जाए। इसलिए सब विषयों पर सिंहावलोकन करते हुए, सिंहावलोकन जानते हैं, सिंहावलोकन करते हुए विवेचन करें। सिंहावलोचन माने होता है सिंह एक बार ऐसे नजर घुमा करके देख करके अपना लक्ष्य स्थिर करके तो फिर वहीं से तोड़ता है, ऐसे सिंहावलोकन। ठीक है, आप लोग प्रस्तुत रहेंगे। श्री बृहद भगवता एते अलिनस्तव जसोखिल लोक तीर्थम गायन्ति आदि पुरुषानुपथम भजन्ते प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या गूढ़म बनेपि न जहात अनघात वदैवम्। हमारे परीक्षित महाराज जी गोपी भाव में आविष्ट होकर अपनी मैया जी को, मैया को रसायन का पाठ कर रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। इस श्लोक में पहले श्लोक में बनल लता स्तर्व आत्मनि विष्णु व्यंजंत इव पुष्प फलाढ्या, इस श्लोक में लता और वृक्षों की कृष्ण के प्रति अनुरक्ति का वर्णन किया। जब लताओं की और वृक्षों की ही कृष्ण की कार सुंदर सौंदर्य और उनके वेणु मधुर वेणु ध्वनि को सुनकर लोगों की ऐसी दशा हो जाती है, वो अष्टसात्विक भावों से विकारों से परिपूरित हो जाते हैं और अपने हाथों में उपहार लेकर अपना प्रिय से प्रिय धन कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देते हैं। तो फिर उससे जो वो तो जड़ के समान, फिर उससे श्रेष्ठ क्रमशः श्रेष्ठ वस्तुओं का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात विशेष करके समझना चाहिए, प्रेम के दो पहलू हैं, प्रेम के दो पहलू, एक है मिलन दूसरा विरह, एक संभोग और दूसरा विप्रलंब। दोनों प्रेम के ही विकार हैं, एक सिक्के के दो पहलू, जैसे एक ही वस्तु प्रेम उसके दो स्वरूप हैं। सांसारिक लोगों में विभाव के अंतर्गत जो अवलंबन और अवलंबन में भी दो विषय और आशय का अवलंबन और उनके उद्दीपन भावों के द्वारा जो आनंद अथवा दुख होता है इस जगत में, उसमें मृत्यु भी हो जाती है, एक दूसरे को मार भी दे सकते हैं विरह में। लैला मजनू इत्यादि का प्रेम ये प्रेम नहीं, ये काम है। इसलिए इस जगत में कभी भी प्रेम नहीं संभव है। किंतु उस जगत में प्रेम चिन्मय सच्चिदानंद घन होता है। उसमें देखने में दो पहलू, विरह और मिलन, संयोग और वियोग, विप्रलंब और संभोग, दोनों दो तरह के दिखते हैं, किंतु दोनों में ही सुख आनंद है। इसी चीज को पहले श्लोक में श्रील सनातन गोस्वामी ने बड़ी सुंदरता के साथ में दिखलाया। इसमें जैसे प्रेम के महान आविर्भाव में मिलन जब होता है उसका कुछ वैशिष्ट है, जब वियोग होता है उसका भी अपना वैशिष्ट है, किंतु दोनों आनंद है। जगत जैसा दुखपूर्ण नहीं है, किंतु दुख जैसा दिखता है। जैसे साक्षात आविर्भाव में साक्षात मिलन होता है दोनों कृष्ण और का गोपियों से, विरह में भी मन में जो कृष्ण की स्फूर्ति होती है, इसलिए उसमें भी आनंद ही है। बल्कि मिलन में ऊपर से मिलते हैं, भीतर को खो देते हैं, और विरह में संपूर्ण रूप से सर्वत्र जहां भी जाएंगे विरह में वही मिलन होता है। मिलन में एक स्थान पर मिलन होगा, जहां पर मिलन होगा वहीं पर होगा, किंतु विरह में जहां कहीं वो आश्रय जाएगा या जाएगी, जहां जहां भी विरह में वहीं पर कृष्ण की स्फूर्ति होगी। हम लोगों की जो स्फूर्ति किसी के मिलने के लिए किसी से होता है, जैसे माता का वियोग पुत्र से होने पर माता जो देखती है उसमें दुख होता है, और उसमें कृष्ण आनंद घन है। इसलिए विरह में स्फूर्ति यदि उनकी होती है तो आनंद की भी स्फूर्ति होगी, इसलिए दुख नहीं। किंतु फिर भी वो दुख ऐसा है, दिखाई देता है कि कोटि कोटि संसार के दुखों से भी अधिक, कालकूट से भी अधिक, किंतु है उसमें जैसे जैसे उदाहरण स्वरूप ले ले, आग तो आग है उसमें जलती है, बर्फ का शायद ठीक आग के विपरीत, बर्फ को एक टुकड़े को हाथ में ले लो और कुछ क्षणों के बाद में कैसा मालूम होगा, हाथ जल रहा है, जल नहीं रहा है, वो ठंडा की घन मूर्ति है, ठंडा की शीतलता की, किंतु मालूम होता है जब वो हाथ गल गया, हाथ है ही नहीं है, हाथ शून्य हो गया, किंतु है वो शीतलता। वैसे ही वो घन आनंद कृष्ण है, इसलिए उनकी स्फूर्ति होने पर जहां कहीं वो आश्रय रहेगा उस कृष्ण की स्फूर्ति होने से वो घन आनंद स्वरूप वो कृष्ण के ही जैसा आनंद वो देगा। यदि यह प्रश्न हो कि विरह में स्फूर्ति या आविर्भाव, स्फूर्ति और आविर्भाव,
स्मरण स्फूर्ति आविर्भाव,
स्फूर्ति एक चीज है और आविर्भाव एक है। जैसे चैतन्य महाप्रभु की मैया अपने बेटे की चिंता कर रही है, आज सुंदर सुंदर हमने पकवान बनाए हैं, तो उस समय कृष्ण क्या करते, महाप्रभु जी क्या करते थे, झट आविर्भूत हो जाते थे। ये आविर्भूत आविर्भाव वहां पर स्वयं आ जाते थे। स्फूर्ति कहते हैं किसको, कृष्ण नहीं आए या महाप्रभु जी नहीं आए, किंतु स्फूर्ति होती है जो आ गए। जैसे गोपियां बैठी हैं वृंदावन में, वहां नंदगांव के उद्धव क्यारी में बैठी हैं और चिंतन कर रही हैं। इतने में किसी गोपी ने तमाल वृक्ष को देखा और कृष्ण समझकर जब आलिंगन किया, इतने में एक दूसरी गोपी ने, ये क्या कर रही है, क्या तू कर रही, तो कृष्ण से मिल रही है। तो कृष्ण कहाँ है, अरे ये तो पेड़ है, तो सतु से दिखा रही, ये तो पेड़, ये है स्फूर्ति। जैसे किसी पेड़ को देखा वहां पर कृष्ण की स्फूर्ति, पर्वत को देखा ये गोवर्धन की स्फूर्ति, नदी देखा कालिंदी की स्फूर्ति, ये स्फूर्ति है। और कभी कभी कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्ण का आविर्भाव वहां होता है, कृष्ण उनके आंखों को आंसुओं को पोंछकर उन्हें प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते हैं, फिर चले जाते हैं ये सोचते हैं कि हमको स्फूर्ति हुई, किंतु ऐसा आविर्भाव और स्फूर्ति में अंतर है। इसलिए स्फूर्ति और आविर्भाव के द्वारा मिलन का आनंद अनुभूत होता है, यह बात सत्य है। स्फूर्ति में भी कृष्ण नहीं है किंतु स्फूर्ति हुई, और आविर्भूत हुए उसमें भी मिलन हुआ, और सचमुच में साक्षात साक्षात हैं उनसे मिलन, ये तीनों में तो मिलन जैसा आनंद होगा। है किंतु एक स्फूर्ति एक आविर्भाव, किंतु यह स्फूर्ति जब भी चली जाएगी या आविर्भाव तिरोहित हो गया, तिरोहित माने क्या, अंतरहित हो गया है, और स्फूर्ति भी समाप्त हुई तो हाय 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 करते रोने लगेंगे, दुख होगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु को रात में बंसी ध्वनि सुनाई पड़ी और वे बंसी ध्वनि की खोज में तीनों फाटकों को पार कर, प्राचीरों को पार कर जगन्नाथ बल्लभ वाटिका में उपस्थित हो गए, और उपस्थित होकर के मूर्छित होकर के पड़े हैं ये लोग। रात भर खोजते 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 लालटेन और ये सब लेकर के वहां पर पहुंचे, खोजते खोजते वहां पर मिले। इन्होंने उन्हें होश कराया किंतु होश हुआ नहीं, अर्ध बाह्य अवस्था हुई। अर्ध बाह्य अवस्था में बतला रहे, तुम लोग हमें क्यों ले आए, मैं तुमसे मिलन हमारा हो रहा था, मैं उनकी सेवा कर रही थी। जगन्नाथ जी के मंदिर में आते आते कुछ होश और कुछ ये हुआ आया, तब वो डकर डकर करके रोने लग गए, ये हमने क्या देखा, मैं कुछ प्रलाप बक रहा था न क्या कर रहा था। तो कहते हैं कि ये आविर्भाव साक्षात मिलन की तो बात छोड़ दो, विरह में स्फूर्ति या आविर्भाव हुआ और वो तिरोहित दोनों हो गए, तो उस समय तो दूसरा पीड़ा होती है, जैसे महाप्रभु जी को पीड़ा होती थी, इन गोपियों को भी वैसे ही पीड़ा होती थी, क्योंकि राधा जी के भाव को लेकर के महाप्रभु जी आए हैं। होगी या नहीं, इसके उत्तर में कहते हैं प्राकृत जो विभाव हैं, प्राकृत विभाव माने क्या, आलंबन, विषयालंबन और आशय अवलंबन। विषयालंबन कौन है, कृष्ण, आशय अवलंबन गोपियां, अथवा कभी यदि कृष्ण आशय अवलंबन हो जाएंगे तो गोपियां हो जाएंगे विषय अवलंबन, ये दोनों। यदि गोपियां उनका चिंतन कर रही हैं तो आश्रय, और कृष्ण यदि इनका चिंतन कर रहे हैं तो वो हो जाएंगे आश्रय, नहीं आश्रय हो तो वो तो तुक्त तो होगा, तो उसके लिए बतला रहे हैं ये स्फूर्ति और आविर्भाव यदि तुरोहित हो गया, दूर हो गया तो दूसरा विष पीड़ा होगी, हाँ होगी, यह बात तो ठीक है, उत्तर यही। ये किस लिए बतला रहे हैं, सनातन गोस्वामी ने यहां पर कहा प्रेम रसिका अर्थात प्रेम तत्प्रेम विदग्धा, गोपियों के गोपियों का सुख ले सही वह उदय संभावना की, जब गोपियां कृष्ण के विरह में रो रही हैं तो ये कौन कह रहा है जी उनको आनंद होता है, कौन कह रहा है, नारदादि ऋषि कह रहे हैं। कोई गोपी कहेगी ये बड़ी सुख से है, यशोदा मैया है बड़ी सुख से है, कृष्ण के विरह में उनका मिलन हो रहा है, आविर्भाव हो रहा है, कहेंगे ब्रज का कोई आके सभी रोएंगे, किंतु तत्स्थ रूप में तत्व का जो विचार कर रहे हैं उनके लिए आनंदमय है। इतनी ऊपर में गोपियां, ये सनातन गोस्वामी का विचार है। जब तत्व से विचार करते हैं तो आनंद ही आनंद है, विरह भी आनंद है, बल्कि मिलन से अधिक आनंद है। इसी चीज को देख ला रहे हैं, जैसा मिलन में थोड़ा सा मिलन होता है, इसके बाद में विरह आ जाता है, वियोग। और वियोग में जब तक वियोग रहेगा, जहां भी जाए वहीं पर कृष्ण नहीं है, किंतु उनका आनंद घन कृष्ण से भीतर भीतर में मिलन होता है। किंतु ये तत्व से कहने वाले जो तात्विक लोग हैं, तत्वविद लोग, वो कहें रसिक जो है ये नहीं कहें, ब्रजवासी नहीं ऐसा कहें, कोई भी ब्रजवासी नहीं कहेगा। जैसे हे जसोदा जी, हे नंद बाबा, हे गोपियां, आप लोग परम धन्य हैं, आप लोग परम सौभाग्यवान हैं, तो नंद बाबा रोएंगे, जसोदा जी रोएंगी, गोपियां रोएंगी। देखो तो हम लोग को ये दुखी बतला रहे, संसार में यदि दुखी हैं तो हमसे बढ़कर कोई दुखी नहीं, कृष्ण से मिल करके और हमें इतना वियोग हो गया, हमें हम जैसा कोई दुर्भागा और दुखी नहीं है। इसी चीज को यहाँ पर कह रहे हैं, किंतु जे हेतु अप्राकृत अवलंबन मिलने जे रूप सच्चिदानंद घन, मैं इसको बतला रहा हूं, कृष्ण सच्चिदानंद घन, इसलिए इनकी स्फूर्ति या आविर्भाव भी परमानंदमय है। ये बात तो ठीक है, किंतु गोपियां अपने विरह में जरूर दुखी हुए, किंतु तात्विक लोग जो तत्व से जानने वाले हैं, इस चीज को इस विषय चिंता कर सकता है खुद को भी, यदि को देखो उन्हें तो विषय अंतर ऐसे से निश्चित तुम्हारे निष्ठ है, यदि के सुनते दृश्य आचे तुम भीतर भीतर किंतु विरह में बाहर में संताप होने के कारण अधिक से अधिक परिमाण में परिपाक में आनंद की अनुभूति हो, परिपक्व आनंद की अनुभूति हो, उद्धव जी कहेंगे, उनके गुरु जी नारद जी कहेंगे, गर्गाचार्य जी ऐसा कर सकते हैं, किंतु ब्रज का कोई भी। यहां तक कि साधक भक्त लोग भी जो रूपानुभव है वो नहीं कहेंगे, और की तो बात क्या है, प्रबोधानंद सरस्वती नहीं कहेंगे, कहते हैं कि इस विरह में बहिरिंद्रिया और अंतर इंद्रिया ये सब की क्रियाओं को वह आनंद रोक देता है, इतना आनंद होता है, इसलिए उनकी मूर्छा हो जाती है। मूर्छा माने क्या, उस चिन्मय आनंद में, आनंद घन में एकदम रह जाती है। ठीक है, इनको बस आनंद भोग की क्रिया रहती है, नाशो रमणी, नाशो रमन, दोनों मनोभाव पेखल जानी, उस समय में मैं हूं रमण कृष्ण, ये सब भाव नहीं रहता, बस आनंद रहता है, बस उसी को यहां पर कह रहे हैं। इसलिए इस विरह को भी उस रूप में महान सुख बतलाया गया, किंतु अधिकारी भेद से विचार ब्रजवासियों को नहीं, तत्ववेत्ताओं को इस रूप में तत्ववेत्ता लोग विचार करते हैं। एते अनिल तब जसो अखिल लोक तीर्थम गायंत आदि पुरुषा अनुपथम भजन्ते, कृष्ण कह रहे हैं गोचारण में, बलदेव जी और कोटि कोटि गायें एक वन से दूसरे वन में प्रवेश कर रही हैं, कृष्ण वृंदावन की शोभा देकर के और बलदेव जी से कह रहे हैं, एते अनिला, ये जो अनिल भ्रमर है, ये मुनिगण है, अमी मुनिगण है, ये मुनिगण है। कौन से मुनिगण? ब्रह्मवादी मुनि नहीं, संकीर्तन करने वाले, नित्य करने वाले मुनि लोग हैं। कैसे मुनि? नारद ऋषि, नारद जी जैसे लोग, ऐसे लोग मुनि। ये काले कृष्ण की तरह काले हैं, इसलिए कृष्ण के परम अनुरक्त हैं। कृष्ण माने, किंतु ये अवहित्था अवलंबन करके बलदेव जी के लिए लगा रहे हैं सब कुछ, अपने भावों को गोपर कर राम के लिए, बलदेव जी के लिए ये सब कुछ कह रहे हैं। तब अखिल जसो जसो अखिल लोक तीर्थम, ये भौरे सब लोगों को पवित्र करने वाले अत्यंत सुंदर जस आपका जस गान कर रहे हैं। अखिल लोगों के लिए यह तीर्थ स्वरूप है। क्या चीज इनका यह जो गान है? अखिल लोगों को पवित्र करने वाला है। वंदे नंद ब्रजेष्ठीनां पाद रेणु वृक्षनसा जसा जासं हरिकथो गीत बोनो को पवित्र करने वाली है। किनकी कथा? गोपियों की। यहाँ पर उसको फिर से कह रहे हैं, ये अनिल जो भ्रमर हैं, आपके अखिल लोक तीर्थ स्वरूप आपका जसोगान करके त्रिभुवन को तारण कर देते हैं, तार देते हैं। ये आपके संग संग में चल रहे हैं, क्षण भर के लिए भी आपका संग नहीं प्रत्याग करते। निश्चय यहाँ देश श्रेष्ठ भक्त मुनिगण है, ये तो निश्चय। और आगे वर्णन करेंगे, अभी तो साधारण अर्थ कर रहे हैं। ये साधारण मुनि नहीं है, ये तो कोई आपके परम भक्त सिद्ध कोई ये भक्त लोग हैं, प्रेमी भक्त होंगे। यदि आप वन में गूढ़ रूप से बाल्य क्रीड़ा करते हुए अपने प्रभाव को छिपाकर, अपने षडैश्वर्य को छिपाकर, साधारण एक बालक की भांति आप मेढक की चाल चल रहे हैं, बंदर की पूछ पकड़ करके इधर चल रहे हैं, श्रीदाम इत्यादि के साथ में लड़ झगड़ रहे हैं, क्रीड़ाओं को कर रहे हैं, बैल कभी बन रहे हैं, कभी घोड़े बन करके कृष्ण को चढ़ाते हैं, कभी कृष्ण को घोड़े या सुभद्र को, मंडली भद्र को घोड़े को बनाकर, श्रीदाम को नहीं। ये सब जरा उम्र में बलदेव जी के बराबर है, इसलिए उनके। और सुबल इत्यादि जो है ये कुछ कृष्ण पक्षी हैं, इसलिए बाल्य क्रीड़ाओं में मत्त होकर के अपने को छिपा रहे हैं बलदेव प्रभु जी, तो भी आपको इन्होंने पहचान लिया है, इन भौरों ने पहचान लिया है, और आपका संग प्रत्याग नहीं कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी क्रमशः यह वर्णन कर रहे हैं, उत्तरोत्तर उत्कर्ष युक्त वर्णन कर रहे हैं। पिछले में उन्होंने स्थावर वृक्ष और लताओं का वर्णन किया, कृष्ण के प्रति अनुराग। जब वृक्ष और लताओं का कृष्ण के प्रति ऐसा उद्दाम उच्छलित प्रेम है, तो ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की क्या, जो जंगम है चलने वाले, इनकी क्या दशा होगी? इनसे ये श्रेष्ठ है। वृक्ष लता कृष्ण और बलदेव जी के साथ साथ में नहीं जा सकते, किंतु ये जहां उड़ करके जाएंगे उनकी वनमाला पर बैठते हुए ये जाएंगे, गुंजार करेंगे। वन लता वृक्ष गान नहीं करेंगे, नित्य नहीं करेंगे, और ये नित्य करेंगे, गान करेंगे, गुणगान करेंगे। इसलिए उनसे ये छोटे से मकोड़े होने पर भी उनसे श्रेष्ठ हैं। तब इनकी महिमा का मैं क्या वर्णन करूं? तभी मैं वर्णन कर रहा हूं। इस तरह से परीक्षित महाराज जी अपनी मैया से कह रहे हैं, और इधर सनातन गोस्वामी हम लोगों को ये बतला रहे हैं, उधर में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को बतला रहे हैं, सुत गोस्वामी जी सोनकादि ऋषियों को ये बतला रहे हैं। उत्तरोत्तर जो श्रेष्ठ हैं, जैसे इनमें श्रेष्ठ श्रोता कौन है, इसमें सुत गोस्वामी और सौनक आदि ऋषि से ये सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित जरूर श्रेष्ठ, और इधर गोपी भाव परीक्षित परीक्षित महाराज और उत्तरा मैया को जो बतला है वो भी वैसे ही है। श्रेष्ठता का निरूपण कौन श्रेष्ठ है निरूपण करना बड़ा भारी कठिन है। तो ये जंगम से श्रेष्ठ है कौन, भौर है। भौरों को कहा गया कामदेव का शंख बजाते हैं, ये सबसे पहले निशांत में रात्रि के अंत होने पर सबसे पहले ये जगते हैं। कैसे जगते हैं, इनको जगाने वाला कौन है, सुंदर सुंदर फूलों की सुगंध हवा से मिश्रित होकर के उनके नाकों में जाकर के उनको जगा देती है, वो जग जाते हैं और शंख बजाने लगते हैं, जब उठिए उठिए। तो ये फौरे जंगमों में जो चलने वाले हैं उनमें भी प्रथम तक कीटों का महत्व वर्णन कर रहे हैं, और इसके बाद में कीटों के बाद में और चलने वाले मृगों की हरिणियों की, और हरिणियों से भी श्रेष्ठ गायों की, ये सब क्रमशः वर्णन कर रहे हैं। गायों और बछड़ों पूर्ववत भगवान श्री कृष्ण अपने अग्रज बलदाम जी को बलदेव जी को रख लक्ष्य करके महात्मा वर्णन कर रहे हैं, किसका, वृंदावन का, वृंदावन का महात्मा और अपना ही महात्मा वर्णन कर रहे हैं, ये परमर्श। गुंजन के छल से आपके अखिल लोक तीर्थ जसों का गान कर रहे हैं, गुणों का गान कर रहे हैं। भुवन मोहन भुवन पावन जस गान कर रहे हैं। भुवन पावन भुवन को पवित्र करने वाला, भुवन माने माया के द्वारा आबद्ध जगत, इनके ये लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं संसारी कष्टों से, केवल मात्र भगवान की कथा सुनने से ये पवित्र हो सकते हैं। इसलिए सबसे प्रथम पहले हरि कथा श्रवण का महत्व बतलाया गया, और सनातन गोस्वामी ने इस अध्याय के प्रारंभ में न जाने कितने श्लोकों का उदाहरण देते हुए श्रवण का, और श्रवण जो करता है श्रवण कराता है उसका महिमा उन्होंने जाना, इसलिए बतलाया इस श्लोक में। यदि श्रवण में रुचि नहीं, भगवान की लीला कथाओं के श्रवण में रुचि नहीं हुई तो पंडश्रम, ये सब क्या है श्लोक, यदि भगवान की लीला कथाओं में रुचि नहीं है और स्वाहा स्वाहा में खूब रुचि है और गोवर्धन की परिक्रमा में खूब रुचि है और अब ये तीन दिन उत्सव हुआ, नगर संकीर्तन में 5 हाथ ऊपर उठ रहे हैं, पुलिस वाले दंग रह गए इनका नित्य देख करके। पुलिस वाले कहते हैं कि हम लोग खाली हाथ सवेरे का मॉर्निंग में जो हम लोग जो कवायद करते हैं उसमें इतना उछल नहीं पाते, ये मृदंग और करताल लेकर के इतना उछल रहे हैं।
ये तो महापुरुष भक्त का महिमा है, तो क्या जाने की
वो करे, किंतु इतना उछल सकते हैं, किंतु जहां यहां आए हरि कथा आरंभ हुई तो बस वो इतनी शक्ति फक्ति सब चली जाती है। करते हैं सब कुछ करो करते हैं, किंतु भगवान की लीला कथाओं के सुनने में यदि रुचि नहीं है तो पंडश्रम, क्यों, हरिनाम में भी जो रुचि देखती है वो लोगों को दिखलाने के लिए रुचि होती है, वो दिखलाने के लिए, और जहां आदमी चले जाएंगे हरिनाम की माला भी बंद हो जाएगी। 1 लाख 2 लाख हरिनाम करते हैं और हरि कथा में रुचि नहीं हुई तो ये समझो कुछ दिनों के बाद में वो नाम छूट जाएगा, नहीं होगा, और हरि कथा के द्वारा सिद्धांत का ज्ञान होगा, और सिद्धांत के ज्ञान होने से वह हरिनाम में जो रुचि होगी वह रुचि आसक्ति और भाव तक लेकर के वो रस में सारा बोर कर दे। इसलिए कहा गया तन्नाम रूप चरितादि सुकृतनानुक्रमेण रसनाम मनसी नियोज्य। भाई रसना के द्वारा भगवान का नाम मन के द्वारा चिंतन, वो कैसे? पहले गुरु मुख से वैष्णव के मुख से श्रवण अनंतर अनुसुणियात, जह अनुसुणियात माने क्या? निरंतर नहीं, अनुगत्य में श्रवण के अनंतर परिपाक होने के बाद में जो हरिनाम होता है वो कभी नहीं छूटेगा। और वहां पर जो सप्त जीवा युक्त जो नाम की जो महिमा बतलाई गई, क्या अंतिम वाला का सर्वात्म विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, वो किस नाम के लिए कहा गया है? घेटू मेटू वाला और काछी टाना वाला नाम के लिए नहीं कहा गया, कहा गया संबंध युक्त होकर अनर्थ निवृत्ति के पश्चात, और संबंध युक्त होकर के स्वरूप की अनुभूति करके कुछ, और तब जब नाम करेंगे तो ये साथ होंगे। अनर्थ निवृत्ति भक्ति विनोद ठाकुर ने इसकी टीका में पहले बतलाया, जब तक सारे अनर्थ हैं और अनर्थ से गजगज होकर प्रीति रहित होकर संबंध ज्ञान रहित होकर के जो नाम करते हैं उसके द्वारा ये नहीं होगा। गुरु के द्वारा दीक्षा शिक्षा और विश्रम्भ सेवा के पश्चात क्रमशः अनर्थ निवृत्ति होने लग जाएगी, जब उस समय में संबंध ज्ञान से युक्त जो हरिनाम होगा उसके द्वारा ये सप्त जिह्वैक नाम की स्फूर्ति होगी, अन्यथा नहीं। इसलिए विजयते श्री कृष्ण वो आराध्य है, किंतु ये भी समझो भगवान की कथा भी आराध्य है। जैसे नाम और नामी अभिन्न है, भगवान की कथा और भगवान भी अभिन्न। इसलिए नाम में यदि रुचि नहीं है, यदि हरि कथाओं के श्रवण में रुचि नहीं है तो नाम में भी रुचि नहीं आएगी। और जहां हरि कथा के श्रवण में आई, सिद्धांत का ज्ञान हुआ, नाम की महिमा का ज्ञान हुआ, समझे, इसके बाद में जो नाम करेंगे वो ठीक। सेवा करते हैं हरि कथा में रुचि नहीं है, दो दिन फिर अंधेरी रात, यदि वैभव है गुरुजी में वैभव दिखला रहे हैं तब तक खूब आदर है गुरुजी के प्रति, उनका पॉकेट भारी है पैसे के द्वारा, और वैभव हो रहा देख रहे हैं तब तक खूब आदर है। और जब देखें जब वैभव कुछ नहीं तो हरि कथा नहीं रहेगी, तो फिर गुरु के प्रति श्रद्धा भी कम जाएगी, वैष्णव के प्रति श्रद्धा कम जाएगी और सारा साधन चौपट हो जाएगा। इसलिए श्रवणम तब कीर्तनम तब स्मरण, ये पद्धति है। इसलिए इसको कह रहे हैं इनका यह जो गान है, इन किन का गान है? अनिल, ये अनिल कौन है? भ्रमर, ये कौन है? ये सिद्ध महात्मा लोग हैं वृंदावन के, क्योंकि कृष्ण के और बलराम जी के आविर्भाव के समय में प्रकट लीला में ये हैं, इसलिए ये क्या है? जत्किंचित त्रिण गुल्म की कटमुखम गोष्ठे समस्तंग हित सर्वानंद मुकुंद दैतंग लीला अनुकूलम परम। मुकुंद दैत सचिदानंद घन मूर्ति वाले और कृष्ण के लीला के अनुकूल उनकी सेवा करने वाले ये लोग हैं। कौन? कीकट भी, कीकट माने ये कीकट के अंदर में आएंगे, सांप बिच्छू अनिल ये भी काटते हैं, और जो कुछ वृंदावन में है वो सब कुछ ऐसे सच्चिदानंद का स्वरूप है, किंतु लीला विस्तार के लिए कृष्ण की सेवा के लिए अपनी महिमा और वैभव ऐश्वर्य को प्रकाश नहीं कर। मालूम होता है ये केवल कीड़े मकोड़े हैं, इसलिए गुंजल के छल से, गुंजार के छल से कृष्ण की वनमाला पर बैठ जाएंगे, कहीं गोपियां विरह में या मिलन में है कृष्ण के, राधा जी के चरण कमलों में गुंजार करते उसमें प्रवेश करने की चेष्टा करेंगे, ये भ्रमर सब। इसलिए भुवन पावन जगत को पवित्र करने वाली जितनी भी चीजें हैं उनमें भगवान का नाम, भगवान की कथाएं, भगवान की भक्ति पवित्र है, और उसमें भी सबसे पहले भगवान की लीला कथाएं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरेड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमद आततम भुवि गृणंति ते वही भुगदाजी, जो कृष्ण लीलाओं की कथाओं का सर्वत्र गायन कर, बदले में किंतु कुछ लिया नहीं, उनका हृदय ले सकते हैं जिनको सुनाया, इसके अतिरिक्त यदि कुछ लेते हैं तो समझो क्या हुआ, ये दुनियादारी में चले आए, भक्ति से उनका कोई भी संबंध नहीं। ये लोग तनिक भी उनका संग नहीं छोड़ते, तनिक का मतलब क्या है, जब सो रहे हैं तभी, जब घर में लौट करके घर में आएंगे यशोदा मैया उनकी आरती उतार रही तो भी, इसलिए तभी उसको कहा जाएगा उस तरह से अनुक्षण सबसे। अर्थात निरंतर सुजस लक्षण भजन कर रहे हैं, ये सिद्ध लोग हैं उनका भजन कर रहे हैं, ये जो कुछ कर रहे हैं कृष्ण की प्रीति विधान के लिए कर रहे हैं, हम लोग चेष्टा करते हैं वो चेष्टा नहीं करते, उनका सब कुछ कृष्ण के प्रति विधान के लिए ही होता है, इसलिए वो लोग सिद्ध लोग हैं। वो रागात्मिक हैं, जितने पशु पक्षी कीट पतंग हैं सब रागात्मिक हैं। इसलिए अजय कैसे भजन करते हैं, अखिल भुवन के सार स्वरूप समग्र लोक के लिए पवित्र करने वाले, और कृष्ण को यहां पर करें बलदेव जी के लिए आपकी प्रति विधान करने के लिए ये गुंजार करते हैं। उसी तरह से हम लोगों की भी यदि चेष्टाएं होंगी, दो चेष्टाएं होनी चाहिए, हमारी निखिल चेष्टाएं कृष्ण की सेवा के लिए हो, और कृष्ण सेवा के लिए अपनी निखिल सुख को त्याग, ये दो चीजें याद रखो। यदि ये नहीं हुआ तो इस भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं किया, तब वो कर्म मिश्रा भक्ति आरोप सिद्धा और संग सिद्धा में, आरोप सिद्धा नहीं रहेंगे उसमें नहीं जाएंगे, शुद्धा भक्ति में नहीं जाएंगे। इसलिए दो चीज को याद रखो, हम जो कुछ भी करते हैं कृष्ण के लिए, वैष्णव के लिए, गुरु के लिए प्रसन्नता का कारण होगा ऐसा करते हैं कि हम उनको प्रसन्न करने के लिए अपनी निखिल चेष्टाओं को करते हैं कि नहीं। हम वृंदावन में आए हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आए हैं, ना अपने किसी मतलब को हासिल करने के लिए, नवद्वीप से भाग करके कोई आ जाए बहुत काम है, जरा मन नहीं लग रहा है, अब जाएंगे चौरासा मन बदल जाएगा, अब मथुरा में राबड़ी पेड़ा इत्यादि मिलेगी, बस मन बदल करके एक दो महीने के बाद। तो ये क्या हुआ, ये अपने सुख के लिए आया ना उनके लिए, और यदि कोई इसलिए आया कि वहां पर भगवान की कथाएं मिलेंगी, वैष्णव का संग होगा, कृष्ण की हम सेवा करेंगे उनकी भाव से, तब तो ये कृष्ण की सेवा होगी। सब कुछ अपने इसके ऊपर में, भावना के ऊपर में निर्भर रहता है। तीर्थ स्वरूप है इनका जो कथा गान है, इनका जो भ्रमरों का गुंजन है, ये तीर्थ। तीर्थ किसको कहते हैं, तीर्थ माने कृष्ण स्वरूप, तीर्थ माने भी कृष्ण ही होता है, तीर्थ स्वरूप कृष्ण के धाम स्वरूप, वृंदावन धाम है और कृष्ण भी तीर्थ स्वरूप हैं। इनका धाम, इनका नाम, उनका जश, जो कुछ है सब वो तीर्थ स्वरूप है, जगत को पवित्र करने वाला स्वरूप, अथवा अधिकारी अनाधिकारी निर्विशेष, अधिकारी व अनाधिकारी हो, कृष्ण के प्रकट लीला में समग्र लोगों के लिए तीर्थ स्वरूप है। क्या भगवान की लीला कथाएं तीर्थों में स्नान करते हैं, उसी प्रकार से इन कथा रूपी तीर्थ में स्नान करने वाला, अवगाहन करने वाला व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। पवित्र माने क्या, कृष्ण की सेवा के लिए ब्रजवासियों का भाव प्राप्त कर देता है। अथवा संसार तारक, भगवत भक्ति महिमा ज्ञान प्रदायक, संसार से उद्धार करके कृष्ण भक्ति का महिमा का ज्ञान देने वाला होता है क्या? ये साधुओं का संग, उनकी लीला कथाएं उनके मुख से निकली हुई, इसलिए वो गुरु स्वरूप है। इसलिए इस वन में रह करके निरंतर आपका जसोगान कर रहे हैं। कौन है साथ सब? अब यहीं पर रह जाए नहीं तो दूर वाले 6:30 बजे 5:30 बजे जरूर हाजिर हो जाओ। 1 मिनट देरी होगी तो फिर हम आरंभ कर दें। इस तरह से हम कल इसकी महिमा का पूरा बात, और आप लोग तैयार होकर के आएंगे बीच में हम लोग कृष्ण तत्व का वर्णन हम लोग करेंगे। सब लोगों के मुख से तैयार होकर के आएंगे। कोई है कि